نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نصیحتیں. کل آپ کے ساتھ ایک نصیحت میں نے شیئر کی تھی، نصیحت کہہ لیں یا نچوڑ کہہ لیں، سبق کہہ لیں، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاتم رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں، ان کے شاگرد شقیق بلخی بہت خاص شاگرد تھے، تو انہوں نے حاتم کے ساتھ 33 ایئرس تک علم سیکھا ان سے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب حاتم رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کیا سیکھا ان 33 سالوں میں، تو انہوں نے 8 باتیں بتائی تھیں. ویسے یہ بات سن کے حاتم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں تو ساری عمر تیرے ساتھ ضائع کر دی، تو نے صرف 8 چیزیں ہی سیکھی، تو کیا ہیں وہ 8 چیزیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، میں نے واقعی 8 ہی چیزیں سیکھی ہیں. ہم ویسے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھا، مگر ان یہ لوگ جو سیکھتے تھے پھر ظاہر ہے ان کے عمل میں آتا تھا نا، وہ باعمل بھی تھے. تو کل ہم نے ایک ان کی بات سیکھی تھی، اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی کی 33 سال کی محنت کا اور علم کا نچوڑ ہے ان باتوں میں. یعنی اگر آپ اتنے سال علم لیتے رہیں، اتنے سال سیکھتے رہیں، تو پھر جا کے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو آپ کو بس آرام سے ہی کچھ دیر میں پتہ چل جاتی ہیں. تو کسی کی بہت اس کے پیچھے کاوش ہے. کل ہم نے نیکیوں پہ بات کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے نیکیوں سے محبت کر لی ہے، میں نے اپنا محبوب کس کو بنا لیا؟ نیکیوں کو، تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ جائے مرنے کے بعد، یعنی جدا نہ ہو مجھ سے. تو ان کے استاد نے کہا تھا یہ تو بہت اچھا کیا تم نے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا سبق کیا سیکھا اپنے ان 33 سالوں کے، یہاں پہ تو 15 16 17 سال علم لیتے ہیں نا ہم، 33 ایئرس مطلب آدھی زندگی انہوں نے اس میں لگا دی. تو دوسری چیز انہوں نے کیا سیکھی؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص دنیا میں ایسے رہا کہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف مقام ربی، کھڑے ہونے سے ڈرا اپنے رب کے سامنے، ونہ النفس عن الہوا، اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا، نفس کی خواہشات سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، قیامت کے دن کے پیشی سے ڈرا، اور خواہش سے، خواہش نفس سے خود کو روکا. تو کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ اللہ کا ارشاد حق ہے، تو میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی اطاعت پر جم گیا. اپنے آپ کو نفس کی، نفس تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اس کو کنٹرول نہ کریں تو خواہشات ہی خواہشات ہیں، اور وہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ انسان کو اطاعت سے روک دیتی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگے رہیں، آپ ایک دن کو ہی دیکھ لیں، اگر سارے دن میں آپ کا ایم ہی ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں، یہ کھا لوں، وہ پہن لوں، یہ کر لوں، تو آپ اللہ کی اطاعت پہ کیسے جمیں گی؟ اللہ کی اطاعت پہ جمنے کے لیے تو اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی خواہشیں پال رکھی ہیں اور پھر ہر خواہش پہ دم نکلتا ہے، اور یہ نہ پوری ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنی خواہشات کو، یہ نہیں ہے کہ آپ خواہش کر نہیں سکتے، دیکھیں خواہش ہمیں जायज़ हदूद में रहते हुए पूरी करने की तो इजाज़त है, हमारे दीन में रहबानियत थोड़ी है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जो आपको इताअत से दूर करते, एट द कॉस्ट ऑफ इताअत आपको पूरी करनी पड़े, तो उनका तो कोई फ़ायदा नहीं ना। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने बेटे से होने लगा था ना, जब फौत होने लगे थे, तो अपने बेटे से उन्होंने कुछ बातें कही थी आखिरी वक्त की। उनकी जो 6 नसीहतें थी, अगर सोचें कि लुकमान हकीम कितनी उनके पास विजडम थी, जाते जाते बेटे को कहने लगे, दुनिया में अपने आप को सिर्फ इतना ही मशगूल करना जितनी दुनिया की ज़िंदगी बाकी है, और वो आखरत के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। खुद सोच लेना, दुनिया की ज़िंदगी कितनी है आखरत के मुकाबले में। कहते हैं इतना ही दुनिया में अपने आप को बिज़ी करना। यानी ये नहीं है कि ख्वाहिशात के पीछे ही इंसान ऐसा भागता रहे, इतना तो यहाँ पे रहना ही नहीं है जितनी हमने ख्वाहिशात पाली हुई है और जितनी हम उनके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। बाकी भी सुना दूँ आपको नसीहतें इनकी, बहुत प्यारी नसीहतें हैं। तो दूसरी इन्होंने नसीहत की थी कि अल्लाह ताला के तुम जितने मोहताज हो ना, उतनी ही उसकी इबादत करना। सुभान अल्लाह, तो हम अल्लाह के कितने मोहताज हैं बताएं? जितने मोहताज हो उतनी ज़्यादा इबादत करना, कहने की ज़रूरत ही नहीं आपको कितनी करनी चाहिए। तीसरी नसीहत ये थी कि आखरत के लिए उसके मुताबिक तैयारी करना, जितनी मिकदार वहाँ का कयाम है, जितनी देर तुमने वहाँ रहना है ना, उसके मुताबिक ही ज़ाहिर तैयारी होगी। देखिए आप अपने सफ़र पे जाते हैं, अगर आपका 3 दिन का ट्रिप है तो आपकी तैयारी कैसी होती है, और अगर आपने 1-2 महीने रहना है तो तब तैयारी कैसी होती है, और अगर आपको पता है कि साल भर वहीं पे है तो तब तैयारी कैसे होगी, बताएं डिफरेंस है ना। 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पे जाएं क्या लेकर जाते हैं, और 2-4 महीने कहीं जाके रहना हो वेकेशन पे तब तैयारी कैसी है, बहुत फ़र्क है ना। तो आखरत में कितना रहना है, अनलिमिटेड। वहाँ के लिए कितना बैगेज होना चाहिए, कितना सामान होना चाहिए हमारे पास, और सुभान अल्लाह यहाँ पे तो उन्होंने आपके लिए लिमिट लगा दी है, इतने सामान से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते, इतने वज़न से ज़्यादा वज़न बढ़ गया तो पे करना पड़ेगा। आखरत के लिए सामान ले जाने के लिए कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई वज़न की कैद नहीं है, जितना मर्जी भेजो मगर पहले बुक कराना पड़ेगा। भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, वहाँ पा लोगे। कितनी आसान शिपमेंट है ना, इससे भी ज़्यादा कोई आसान है। और फिर चौथी नसीहत, जब तक तुम्हें जहन्नम से खुलासी की का यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक उससे खुलासी की कोशिश करते रहना। यानी जब तक तुम्हें ये यकीन ना हो जाए कि मैं जहन्नम से आज़ाद कर दी गई हूँ, जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए कि जहन्नम में अब मुझे नहीं जाना, उस वक़्त तक कोशिश करते रहना उससे आज़ादी की। तो हम में से बताएं कितने लोगों को यकीन हो गया है, कितने लोगों को यकीन है? कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमा दिया था, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होता है। अच्छी उम्मीद तो रख सकते हैं लेकिन यकीन किसी के पास भी नहीं है। पांचवी नसीहत क्या है, मुझे बहुत प्यारी लगी ना ये नसीहतें, तो मैंने कहा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पांचवी नसीहत उन्होंने अपने बेटे को की थी, गुनाहों पे इतनी जुर्रत करना, यानी गुनाह इतने ही करना जितना जहन्नम की आग में जलने का हौसला हो और हिम्मत हो। सुभान अल्लाह, जब गुनाह करने लगे ना तो ये देख लें कि सज़ा तो ज़ाहिर है गुनाह की, तो इतना ही करूँ कि जितना फिर सहने का हौसला भी हो, तो फिर कितना करेंगे, कितनी आग सह सकते हैं बताएं, हम तो सह ही नहीं सकते। फिर छठी नसीहत ये की थी, आखिरी नसीहत, कि जब कोई गुनाह करना चाहो तो ऐसी जगह तलाश करना जहां अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते ना देखें। सुभान अल्लाह, क्या नसीहत है उनकी। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना फिर हमें कोशिश करनी चाहिए, कितनी हमें मेहनत करनी चाहिए, कितना हमें ख्वाहिशात को रोक रोक के और फिर अपने आप को अल्लाह की इताअत की तरफ लाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जिस शख्स का मुंतहाए मकसद यानी उसका अल्टीमेट गोल दुनिया हो जाए तो उसको अल्लाह से कोई वास्ता नहीं है। फिर अल्लाह ताला उसको चार चीज़ों में मुब्तला फरमा देते हैं, ऐसा गम उसको दे देते हैं कि कभी ख़त्म ही ना हो। अब देखिए ना, जब गोल दुनिया ही हो जाता है, ख्वाहिशात ख्वाहिशात, ऐसा गम लग जाता है, वाकई हर वक्त यही फिक्र रहती है, अच्छा 2 के 4 कैसे बनेंगे, 4 के 6 कैसे बनेंगे। नंबर 2, ऐसा शुगल अल्लाह ताला उसको दे देते हैं जिससे कभी फरागत ही नहीं होगी, इसीलिए लोग कहते हैं ना कल करेंगे, बस अभी इस काम से फारिग हो जाए फिर करेंगे, उससे हो जाए फिर करेंगे, फिर अल्लाह की तरफ ध्यान करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। बड़े बड़े प्लान्स तो हैं लेकिन वो कल पे डाले हुए, क्योंकि उनको ऐसा गम लगा है जिससे कभी फरागत ही नहीं हो सकती, ऐसा शुगल है। और फिर ऐसा फ़क्र अल्लाह ताला दे देगा जिससे कभी मुस्तगना ही नहीं होंगे, जितनी आमदनी बढ़ती जाएगी इतना खर्च भी ज़्यादा होता जाएगा, हमेशा आमदनी उसको कम ही मालूम होगी, ये लगेगा कि मेरी इनकम बहुत थोड़ी है। और चौथी चीज़ अल्लाह ताला उसको ऐसी लंबी लंबी उम्मीदें जो कभी भी पूरी ना होंगी वो दे देते हैं। अब ये है वो जिसने अपना गोल इस दुनिया को ही बना दिया, अल्लाह ताला को भी ऐसों की परवाह नहीं। लेकिन जिस कदर आप दुनिया का गम करेंगे ना, उतना ही आखरत का गम दिल से निकलता जाएगा, और जितना आखरत का गम करेंगे उतना दुनिया का गम आपके दिल से निकल जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, निकल जाएगा। ये इसकी फिर इतनी फिक्र नहीं रहेगी। हम वो जो फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी लगा लगा के, और वो जो हमेशा रहने वाली है उसको बेच रहे हैं। कितना घाटे का सौदा है ना। देखिए, दुनिया की आरजुएं, दुनिया की उम्मीदें, ख्वाहिशात, ये कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, ये कभी भी नहीं ख़त्म होती। इंसान जितना इनके पीछे दौड़ता है, आप ख्वाहिश पूरी करके देख लें, एक करेंगे फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरी करेंगे तीसरी आ जाएगी, इसी तरह चलता रहेगा, कभी भी नहीं ये ख़त्म होती। इनकी कोई लिमिट भी है? और जो अल्लाह से डरता है ना, उसके लिए आखिरत का सफ़र आसान हो जाएगा। और जिसने लंबी लंबी उम्मीदें मान ली, ख्वाहिशात ये वो, उसका अमल सुस्त हो जाता है हमेशा, मौत तो करीब है। और जो चीज़ भी, एक बुज़ुर्ग ने फरमाया था कि भाई एक बात समझ ले, जो चीज़ भी तुझे तेरे रब से दूर करके अपने अंदर मशगूल कर ले वो तो मनहूस ही है ना। सोचिए ना, जितनी ख्वाहिशात हैं, जितनी हम चीज़ें जो हमारे दिलों में हमने पाल रखी हैं, वो हमें रब से जो दूर करने वाली हैं कि उनमें पढ़ के इंसान अल्लाह को भूल जाए, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। जितने हम इंसान बैठे हुए ना, सभी को कब्र में जाना है, फिर वहाँ जाके उस वक्त सबसे जिस चीज़ की नदामत होगी, पशेमानी होगी, वो है जो वक्त आपने यहाँ पे बेकार गुजार दिया, और इस चीज़ पे खुशी होगी जो आगे भेज दिया। ये जो पीछे छोड़ी चीज़ें हैं, इनके ऊपर तो लोग ही लड़ते रहेंगे जो ज़िंदा होंगे, इंसान तो आगे को सुधार जाता है। तो इसलिए इंसान अगर सोचे तो वाकई अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दे रखा है, उसके ऊपर ही अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें ना, उस पे भी हम सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। कहाँ ये कि हमारी आज तक ख्वाहिशात ही पूरी नहीं हो रही, आज तक हम इसी में भाग दौड़ कर रहे हैं, और रमज़ान में भी हमें होश नहीं आता और फिर हम भाग रहे हैं भाग रहे हैं, इस चीज़ के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे। अब आप खुद सोचिए जरा, मैं आपको बताऊं कि उन लोगों की कैसी फिक्रात थी, कैसी उनकी, उनके वो भी तो इंसान थे ना पहले लोग, क्या वो इंसान नहीं थे? उनकी नहीं कोई बच्चे होते थे, बीवी, घर, उनकी कोई तिजारतें? आपका क्या ख्याल है? बस इसी ही तरह वो रहते थे। देखिए हज़रत उम्मे दरदा जो थी, वो अपने हस्बैंड से, हज़रत अबू दरदार से अर्ज़ करने लगी, आप इस तरह माल की तलाश, इस तरह कोशिश ऐसे क्यों नहीं करते जिस तरह फलां फलां शख्स करता है? जैसे अक्सर बीवियां कहती हैं ना, फलाने को देख लें वो इतना आगे चला गया, और आपको देखें आप अभी तक वहीं के वहीं हैं। तो उन्होंने भी इस तरह अपने हस्बैंड से कहा। तो अबू दरदार रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तुम्हारे आगे एक बहुत मुश्किल घाटी है, बहुत मुश्किल जगह है, यानी मैदान हशर, वो आने वाली है। इसमें भारी बोझ वाले, यानी जिनके जिम्मे हिसाब किताब का बोझ हो, इतनी नेमतें हो, उतनी सहूलतें हैं, तो भारी बोझ वाले नहीं गुजर सकते। इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इस घाटी में हल्का रहूं, यानी मेरा हिसाब किताब का बोझ हल्का फुल्का हो, ताकि मैं आराम से वहां से गुजर जाऊं। अब आपको पता है वहां पे तो नेमतों का हिसाब दिए बगैर जा ही नहीं सकते, कैसे गुजरेंगे? जितनी हमने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं और उनको लेने की कोशिश करते हैं, अब हमारा हिसाब किताब उतना ही बढ़ जाता है। उन लोगों को इतना खौफ रहता था कि क्यामत में हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, हम हिसाब कैसे देंगे इनका। इसलिए हर वक्त उन चीज़ों की तैयारी में ही लगे रहते थे हम। हमें देखें दुनिया की फिक्र कितनी सवार रहती है ना जहन में, उस घाटी का हमें कभी फिक्र आती है? और इतनी इतनी बात पे अपना हिसाब लेते रहते थे, हैरत है मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों पे इतना हिसाब। हज़रत हसन बिन सिनान एक जगह जा रहे थे, रास्ते में एक मकान नज़र आ गया, पहले वहाँ पे नहीं था, जैसे हम जा रहे होते कभी देखते हैं, कहने लगे ये मकान कब बना है? फिर अपने नफ्स को कहने लगे, सुबहान अल्लाह, अपने आप को कहने लगे तूने ये फजूल बात क्यों पूछी, तुझे इससे क्या कि ये कब बना है, अब मैं तुझे 1 साल रोज़े रखने की सज़ा दूंगा, कि तूने फजूल बात क्यों कही। इतने वो लोग, यानी एक एक चीज़ अपनी वॉच करना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जिस चीज़ में मेरी गर्ज नहीं है मैंने क्यों वो पूछी। सुभान अल्लाह, ज़रा ज़रा सी मामूली सी बात पे अगर उनसे गलती हो जाती, अपने नफ्स को खुद सजा देते थे, अच्छा अब तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये सब क्यों था? सिर्फ उस घाटी के डर की वजह से, जैसे कि हज़रत अबू दरदा ने फरमाया। तो हम सब उससे ऐसे मुतमईन हैं, मैं आपको नहीं कह रही, बाखुदा मैं अपने मेरे मैं अपने आप को कह रही हूँ, ये सबसे पहले मैं, आप, हम सब ऐसे मुतमईन हैं जैसे कि पता नहीं हम सहाबा कराम के लिए वो घाटी थी, हम तो पता नहीं जहाज़ में बैठ के वहाँ से गुजर जाएंगे। हम कितना अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, ज़रा सा भी हमें ख्याल नहीं है, भूल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बड़ी हैरत की बात है कि तू अपने गुलाम को, अपने नौकर को, अपनी औलाद को, जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको सजा देता है, और कहता है देखो अगर सजा ना दी ना तो ये बेकाबू हो जाएंगे, सरकश हो जाएंगे। कहते हैं ना हम, इनको अभी बच्चों को फिक्स करना पड़ेगा, अगर ये इनको आज ना सही किया तो फिर ये ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन कहते हैं अपने नफ्स की भी कभी परवाह कर, वो सरकश होता जा रहा है, सर पर ही चढ़ता जा रहा है, उसकी तो तुझे कभी फिक्र नहीं हुई। दूसरों की सरकशी से तो तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना तेरे नफ्स की सरकशी से तुझे नुकसान पहुंचता है। देखिए हमारा नफ्स फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, और जितना उसको देते जा रहे हैं वो उतना फैलता जाता है। आप 4 8 घंटे 10 घंटे सो जाएंगी तो नफ्स कहेगा और 2 घंटे सो जाओ, वो और फैलेगा। आप एक चीज़ इसको दिलाएंगी तो वो एक और की ख्वाहिश करना शुरू हो जाएगा, नहीं इससे बेहतर होती तो अच्छा था। तो कहते हैं तेरे नफ्स की सरकशी से तेरी आखरत को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों की सरकशी से तुझे नहीं कोई नुकसान हो रहा, दूसरों की सरकशी से अगर नुकसान पहुंचता है तो वो तेरी ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारा जो नफ्स कर रहा है वो तो तुम्हारी आखरत का नुकसान है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसीलिए वो लोग अगर आखरत के कामों में कुछ कोताही हो जाती थी वो इतनी फिक्र करते थे उसकी। तो थोड़े से आज वाकयात आपको बताऊंगी कि किस तरह वो लोग अपने आप को इबादत के लिए, इसके लिए मशगूल करते थे। क्योंकि देखें, जब रोज़े शुरू होते हैं ना, हम बड़े शौक से, शौक से, बड़े उस तरह से शुरू करते हैं। फिर जब ज़रा एक आध हफ्ता गुजरता है ना, तो ढीले पड़ने शुरू जाते हैं। अच्छा चलो, अब ये यहाँ से ये छोड़ देते हैं, वहाँ से वो छोड़ देते हैं। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी मुझे इबादत में सुस्ती होने लगती है, तो मैं जो औलिया अल्लाह हैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़ता हूँ, उनके अहवाल को देखता हूँ, और अपने अंदर शौक पैदा करता हूँ कि ताकि मैं भी उस तरह से इबादत करूँ। और इतनी प्यारी ये बात उन्होंने कही ना, कि ये चीज़ बड़ी सोचने की है कि वो जो मुशक्कतें मेहनतें कर गए, वो तो अब ख़त्म हो गई, अब थोड़ी कर रहे हैं वो, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी नेमतें, उनकी राहतें बाकी रह गई हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वो जहाँ अपनी मेहनतों की वजह से पहुँच गए, अब तो वो ने वो वहाँ की आसानियाँ वो तो नहीं कभी ख़त्म होंगी। मेहनतें तो ख़त्म हो गई, मेहनतों का टाइम ख़त्म हो गया। तो मेहनत करने का तो टाइम बहुत थोड़ा सा है, फिर हमेशा की राहत है। वो तो जब कोई नेक काम उनसे हो जाता था, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। ये नहीं अपने आप से ही खुश हो जाएं कि हाँ हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, अल्लाह का शुक्र करते थे कि अल्लाह ने तौफीक दे दी, और उसको इसके कबूलियत की दुआ किया करते थे। और अगर कोई बुरी बात हो जाती तो उससे इतने परेशान होते, अल्लाह से तौबा करते, इस्तग़फार करते, और अपने आप को सज़ा देते थे कि तुमने ये किया ना। अब ये मसलन, अगर हमारी नमाज नहीं है, एक दफ़ा गफलत की हमने नमाज पढ़ी हो, तो हमने कभी अगर अपनी नमाज को दोबारा दोहराया हो, दूसरी दफ़ा भी सही नहीं पढ़ी गई, तीसरी दफ़ा दोहराएंगे बिल्कुल सीधा हो जाएगा नफ्स, अगली दफ़ा नहीं कोई वसवसे आएंगे। ये ना, हम इतनी इसको ढील देते हैं ना। और वो लोग कैसे इबादत में, और कैसे एक 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 अपने टाइम को वॉच करते थे, एक एक मिनट को वॉच करते थे। हज़रत दाऊद ताई जो थे जिला तलान हो, रोटी के टुकड़े पानी में भिगोए हुए पी लिया करते थे। यानी रोटी नरम हो जाएगी ना, तो वो उसको ही गटागट पानी में पी ली, डाल के तो पी ली। तो रोटी वैसे नहीं खाते थे चबा के। किसी ने उनसे पूछा, वजह पूछी, तो फरमाया इसके पीने में और रोटी चबाकर खाने में कुरान की 50 आयतों का हर्ज होता है। इतनी देर में मैं 50 आयतें पढ़ लूँ, जितनी देर में मैं रोटी चबा के खाऊँगा। चलो सारा वक्त नहीं, अगर हम रमज़ान में ही सिर्फ इतना कर लेंगे, अपने एक एक मिनट को वॉच करें, मेरे यहाँ पे मिनट लग गया, यहाँ पे लग गया है, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये भी ना ज़ाया जाए, ये भी ना ज़ाया जाए, क्यों मैं बातों में गाऊँ। वो तो रोटी को भी इस तरह कर लेते थे कि उसमें भी ना वक्त ज़ाया हो, उस दौरान भी मैं 50 आयतें पढ़ सकती हूँ। ये वक्त जिसमें वैसे ही हर नेकी कितने गुना बढ़ जाती है, उस टाइम को हम वेस्ट करते हैं। कितना बड़ा सरमाया हमारे हाथ आया है, कितना बड़ा, और हम उसको जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, वक्त को गुजरने दे रहे हैं। ये नहीं कि आप कभी सोए ही ना और पूरा दिन आप मेहनतें करते रहे, नहीं, अपने जिस्म का भी आपके ऊपर हक है। आप सोएंगे अगर इस नीयत के साथ कि जब मैं उठूंगी तो ताज़ा दम होके फिर मैं बेहतर तौर पे काम कर सकूंगी, इबादत भी कर सकूंगी। अगर नहीं सोएंगे, अगर आप हर रात सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, जाहिर सी बात है चौथे दिन आपकी हालत बुरी हो जाएगी। तो ये नहीं आपको कहा जा रहा कि जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल चीज़ें वो करने लगें, लेकिन कम से कम अपने वक्त का ख्याल रखते हुए जो वक्त आपके पास है उसकी कदर कीजिए। यही हज़रत अबू दरदाद थे ना, ये ऐसे, क्योंकि वो सुभान अल्लाह ये ज़रा लेट इस्लाम लेकर आए थे ना, तो इनको सारा वक्त ये होता रहता था। इनका दुख क्या था पता है? इनको ये होता रहता था, इतनी मैं लेट इस्लाम लेकर आया, मैं किस तरह मेकअप करूं। जैसे अब आपको होता है ना कि मैंने कुरान अब पढ़ा है, शौरी मुसलमान तो मैं अब बनी हूँ, अब कैसे मेकअप करूँ उस लाइफ को, अब बजाय ये हसरत करते रहने के, हाय हमने कि पहले क्यों नहीं कर लिया, हाय हमने पहले क्यों नहीं कर लिया, हाय हमारा वो वक्त क्यों ऐसे गुजर गया। ठीक है, वो हसरत आपकी इंशाल्लाह उस पर भी आपको अजर मिलेगा कि आपको ये हसरत होती है, अफसोस होता है कि इतना वक्त क्यों ऐसे गुजर गया, अब आप कुरान की तरफ इतनी लेट क्यों आए। लेकिन अब क्या हो सकता है कि अपनी दौड़ डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, ज़्यादा तेज़ दौड़े, कि वो पिछला वक्त भी तो मेकअप करना है ना। तो यही अबू दरदा है कि फरमाते हैं कि अगर दुनिया में तीन चीज़ें ना होती तो मेरे लिए इस दुनिया में एक दिन भी रहना गवारा ना था। तीन चीज़ें मुझे इतनी पसंद हैं कि उसकी वजह से मुझे जीना पसंद है। पहली चीज़ कहते हैं, एक सख्त गर्मी के दिन दोपहर के वक्त रोज़े में प्यासे रहने की लज्जत, दूसरे आखिरी रात में सजदा करने में जो लुत्फ़ आता है उसकी लज्जत, आपको तीसरे पहर में मैंने आपको कहा था सहरी के वक्त आप जब उठते हैं ज़रा 10-15 मिनट पहले उठ के, तो उस वक़्त जो आप नमाज़ पढ़ें जब सब सोए होते हैं, उस सजदे की जो लज्जत है वो आप उसी वक्त ही महसूस कर सकते हैं, सारा दिन में नहीं वो वैसी लज्जत आ सकती। तीसरे कहते हैं, ऐसे नेक लोगों की सोहबत जिनकी बातों में उम्दा मेवे ऐसे चुने जाते हैं जैसे बाग में उम्दा उम्दा फल छांट कर चुने जाते हैं, यानी वो उनकी जो बातें हैं, नेकी की बातें, खैर की बातें, अल्लाह के जिक्र की बातें, उनकी सोहबत की वजह से, कहते हैं इन तीन चीज़ों की वजह से मुझे ज़िंदगी प्यारी है। तो ये लोग इस तरह से इबादत किया करते थे। आपको पता है हज़रत उवैस करनी थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, लेकिन बाद में आए थे। तो इनका वाक्या आता है कि किसी दिन किसी रात को रुकू करते थे तो सारी रात रुकू में गुजार देते, फिर कहते आज की रात सजदा की है तो तमाम रात एक ही सजदे में गुजर जाती इनकी। तो जब उतवा गुलाम तायब हुए तो खाने पीने की ज़रा भी परवाह ना करते थे। इन्हीं की वालदा ने एक दफ़ा इनसे कहा था, अपने नफ्स पे ज़रा रहम खाओ, कुछ आराम भी कर लिया करो। कहने लगे, इस पर रहम खाने के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, इस पे रहम खाने के लिए ही तो थोड़े दिन की मुशक्क़त है, फिर तो हमेशा की राहत ही है। तो ये देखिए ना, ये लोग इनके पर्पस, इनकी जो इनके वाक़यात सुनते हैं तो पता चलता है इनका पर्पस ऑफ लाइफ को खाना पीना हल्ला गुल्ला ये नहीं था। ये कहते थे अभी अभी कर लें, फिर उसके बाद तो हमेशा के मज़े हैं। हम कहते हैं अभी मज़ा कर लें, उसके बाद पता नहीं मिले ना मिले। अब रमज़ान शुरू होने लगा, बस ऐसे दौड़ लगी हुई, सारे मज़े अभी कर लो, पता नहीं रमज़ान आने लगा कि क्या होने लगा। ये रमज़ान है 1 महीने का तो तब ये हालत है, अगर कोई 2-4 महीने का होता तो पता नहीं हम क्या करते, साल भर से ही हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करने लगते कि पता नहीं रमज़ान आ रहा है, बस हमारा तो सारा जैसे बैन लग जाएगा, अब फिर उसके बाद तो हमने कुछ कर सकना नहीं है, बल्कि हमारी तो सारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। वो लोग ये थे कि जब 40 साल की उम्र को पहुंच जाते थे ना तो अपने आप को इबादत के लिए फारिग कर लेते थे कि बस अब तो चल चलाओ का वक्त है, हम 40 क्या 60-70 के भी होकर कोई होश ही नहीं है। इसीलिए अहमद बिन हर्ब कहते हैं, हैरत है उस शख्स पे जिसको ये पता है कि आसमानों पर उस पे उसके लिए जन्नत है और जन्नत को आरास्ता किया जा रहा है और उसके नीचे जहन्नुम भड़काई जा रही है, इन दोनों के दरमियान उसको कैसे नींद आती है। ठीक, एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नुम है, फिर कैसे सो सकते हैं। इसीलिए वो लोग रातों को करवटें बदलते थे, रातों को कभी जन्नत के बागों में और कभी जहन्नुम की घाटियों में खुद को महसूस करते थे। और हमारी ज़िंदगी रेत की तरह हमारे हाथों से निकली जा रही है लेकिन हमें नहीं परवाह। और औरतें भी इसमें पीछे नहीं थीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों की ये बात है, औरतें भी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, एक दिन इनकी इनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद आई कि मैं चलो इनको सलाम कह दूँ, तो सलाम करने आए तो चाश की नमाज़ पढ़ रही थी और उसमें आयत पढ़ी थी फमन अल्लाह अलैना ववकाना अज़ाब अस्समूम, कि एहसान किया अल्लाह ने हम पे कि हमको जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया। तो कहते पढ़ती जा रही थी, रोती जा रही थी कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। ये सूरह तूर की आयत है कि अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा लिया। पढ़ती जाएँ, रोती जाएँ, कहते बहुत देर तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया मैं ज़रा जाके बाज़ार हुआ आता हूँ, वापस आके फिर इनसे मिल लूँगा। कहते मैं बाज़ार चला गया, वापस भी आ गया तो उसी तरह खड़ी हुई थी, उसी तरह आयत पढ़ रही थी और रो रही थी। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, भला उन औरतों के नहीं कोई ख्वाब थे, कोई ये थे कि भई हम ये खरीदें, ये पहने, खुद को बनाएं, संवारें, सजाएं। ठीक है आप ये ज़रूर करें, आपका हक है, लेकिन हम इबादतों में कितने सुस्त हैं ना। जब इस तरह से देखते हैं इन लोगों को तो फिर सोचते हैं अल्लाह हम कहाँ खड़े होंगे, कहाँ हैं हम। इसीलिए आपको ये वाक्यात मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए कि हम सुस्त ना पड़े। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब ईशा की नमाज़ से फ़ारिग हो जाती थी तो अपने कपड़ों को अपने ऊपर अच्छी तरह लपेट के छत पे खड़े जाती, दुआएं करने लगती। कहती ये अल्लाह सितारे छटक गए, लोग सो गए, बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, हर शख्स अपने महबूब के साथ तन्हाई में चला गया और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। ये कह के नमाज शुरू करती थी, सारी रात पढ़ती रहती थी। और फिर जब सुबह होती तो कहती ये अल्लाह रात चली गई, दिन निकल आया, काश ये मुझे मालूम हो जाए मेरी ये रात तूने कबूल की है कि नहीं की। अगर कबूल कर ली है तो मुबारकबाद दूँ अपने आप को, नहीं कबूल की तो मैं अपने आप से ताज़ियत करूँ। तेरी इज्जत की कसम मैं तो हमेशा इसी तरह करती रहूँगी। तेरी इज्जत की कसम अगर तूने मुझे अपने दर से धकेल दिया तब भी मैं तेरी बख्शिश का जो हाल मुझे पता है उसकी वजह से मैं तेरे दर से नहीं हटूंगी। ऐसी थी वो औरतें। एक दिन अल्लाह के सामने ये भी खड़ी होंगी, हम भी खड़े होंगे, ये अपने आमालनामे खोलेंगे तो उनमें ये सब कुछ लिखा होगा। हमें तो तरावी के लिए खड़े होना ही मुश्किल हो जाता है, उसमें हिलते जाते हैं, हिलते जाते हैं, चैन से खड़े होना ही मुश्किल है, उसमें ही हम कहते हैं हम तो थक गए, बस इतना ही करना चाहिए जितना आसानी से हो जाए, तो बस हम इतना ही कर सकते हैं, कम से कम पे राजी हो जाते हैं। कई दिन कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। एक मैं किसी का पढ़ रही थी हाल कि एक कोई बुज़ुर्ग थे तो वो कहते हैं कि एक दिन मैं बाज़ार जा रहा था, मेरे साथ मेरी लौंडी थी, तो मैं उसको एक जगह पे बिठा के गया और उसको कह गया यहीं बैठी रहना मैं अभी आता हूँ। जब मैं वापस आया तो वो अपनी जगह पे ही नहीं थी। कहते मुझे बड़ा गुस्सा आया, उससे की हालत मैं घर गया तो मैंने देखा घर में थी, तो उसने जब मेरा गुस्सा देखा तो कहने लगी मेरे आका आप गुस्से में ना आए, बस बस मेरी बात सुन ले ज़रा, दरअसल आप मुझे जिस जगह बिठा के गए थे वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, मुझे ये डर लगा कहीं ये ज़मीन धंस ना जाए कि जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा उस जगह पे तो अजाब ना आ जाए। हम तो कितने ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र ही नहीं होता, हम मज़े से बैठे हुए, हमारी अपनी मुसलमानों की मजलिस हैं, हम बीचेस पे जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम ऐसी जगहों पे घूमते फिरते रहते हैं, ना खुद जिक्र करेंगे वहाँ पे, जिक्र वैसे भी नहीं हम भी नहीं करेंगे, हमारे कितनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कोई अल्लाह का जिक्र ही नहीं। सुभान अल्लाह, कि वो इतनी सी बात पर डर जाते थे कि यहाँ पे अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हम तो गुनाहों की बस्तियों में ऐसी जगह, आप देखें वो जगह जो दुनिया में मशहूर हैं कि उनका नाम लेते ही गुनाह का, आपको पता है जुए की जगह है जहाँ पे गैम्बलिंग होती है और वो मशहूर है उनमें, वहाँ पे जाके हम फन करते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं सैर के लिए, हमें तो वहाँ पे भी जाके नहीं कभी ये आया कि अल्लाह ये जगह कहीं धंस ना जाए, इसके ऊपर अजाब ना आ जाए, आसमान से पत्थर ना गिर पड़े, यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह ताला हम सबको इबादात में एक्टिव करते, इबादत के लिए हमें हिम्मत देते, ला हमारा शौक़ बढ़ जाए। असल में शौक़ की बात है। शौक़ जो है ना, जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो आप देखें, मसलन हमें शॉपिंग का शौक़ है या कुकिंग का शौक़ है, हम इतनी देर खड़े रहते हैं चूल्हे के आगे, जी खीर बन रही है तो बन ही रही है, हलीम घोटा जा रहा है तो इतने घंटे हो रहे हैं उसी के, अच्छा थक भी जाएंगे तो फिर भी मज़ा आएगा कि भाई हमने बहुत अच्छा कारनामा किया। और शॉपिंग के लिए हम मॉल में घूमते रहेंगे, कितने घंटे हो जाते हैं ना, मॉल जाएँ तो 2-3 घंटों को तो वैसे ही नहीं पता चलता, एक एक स्टोर में इतनी देर लग जाती है। लेकिन हमें वो थकावट महसूस होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन उसकी भी लज्जत है कि जी हमें बड़ा मज़ा आया, है ना। शहर के लिए जाते हैं, वहाँ से भी हम थक के ही आते हैं, एक्टिव तो नहीं होके आते। सारा दिन के लिए आप पिकनिक पर चले जाएं, फिर जब शाम को आ रहे होंगे थके होते हैं ना, लेकिन मज़ा आया। लेकिन वैसा मज़ा हमें तो इबादतों में नहीं आता, हम थकाना ही नहीं चाहते एक तो खुद को, और अगर थक जाएं तो कंप्लेंट्स कितनी हैं, हाँ बस वो बहुत थकावट हो गई। मैं अपने आप को रख के सोच रही थी इन लोगों के साथ हम अपने आप को कैसे कंपेयर करेंगे, या अल्लाह वो लौंडियाँ गुलाम भी कैसे थे, कि वालदा किसी की कह रही हूँ कि अपने आप पे रहम करो तो कह रहे रहम ही तो कर रहा हूँ, रहम ही तो है ये इसके ऊपर कि अपने आप को आग से बचाने की कोशिश में लगा हूँ। अब हम आईना भी देख सकते हैं, हम जितनी ज़्यादा लज्जतों में, देखिए एक बात ये होती है कि एक बंदा है ना जिसको कि अल्लाह ताला ने नहीं कुछ दिया तो वो उसके ऊपर ही कनात कर रहा है, उसके ऊपर ही राज़ी है, तो अल्लाह ताला भी उससे थोड़े अमल पे राज़ी हो जाता है। जो अपनी थोड़ी थोड़ी चीज़ अल्लाह से लेके राज़ी हो जाए ना, अल्लाह भी उससे थोड़े अमल पे राज़ी हो जाता है। और जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया हो, उनसे एक्सपेक्टेशन भी ये है कि वो अमल भी उसके मुताबिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नौकर है, उसको आपने बहुत बड़ी तनख्वाह पर हायर किया हुआ है, बहुत बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं उसको, बहुत लग्जरीज दी हुई हैं, बड़े पैकेजेस के साथ, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि ये कैसा काम करे, ये वो आपके कोई यानी छोटे मोटे मुलाजिम जितना काम कर ले, जिसको आप 200-400 दे रहे हैं उसके मुताबिक करें, या ज़्यादा करें या बेहतर करें। जाहिर है आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई इसको मैंने इतनी ऊंची तनख्वाह पे रखा है तो ये काम भी उस मुताबिक करें। हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है, जितनी नेमतें हैं उसी के मुताबिक अमल भी होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जितनी ज़्यादा नेमतें हैं हमारा अमल उतना ही सुस्त है, जिसको जितना कुछ मिला है वो उतना अल्लाह के सामने झुके, उतना ही वो ज़्यादा इबादत गुजार बने, इबादत में ज़्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई करे, और रब्बी आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, अल्लाह हमारी मदद फरमाइए अपना ज़िक्र करने में और शुक्र करने में और अच्छी इबादत करने में। अल्लाह वो भी हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि तेरी इबादत ही अच्छी तरह कर सकें, इस इतने काबिल भी नहीं कि तेरा शुक्र ही अच्छी तरह कर सके। या अल्लाह उसमें भी हमें तेरी मदद चाहिए, तू हम पे रहम फरमा। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला एक चीज़, एक बुरी आदत इंशाअल्लाह इस रमज़ान में अहद करें कि उसको आपने छोड़ना है। वो बहुत बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुनाहों में उसको शामिल फरमाया है, और इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में स्पेशली कह रही हूँ, उस गुनाह के बारे में, क्योंकि हम उसको बहुत छोटा समझते हैं, और वो है झूठ, झूठी बात, झूठी ज़िंदगी, झूठा अमल, झूठ झूठ झूठ, पेपर्स में झूठी बात लिखना, झूठी इंफॉर्मेशन देना, बातों में झूठ बोलना, चका चका झूठ। आपको पता है एक झूठ जब बंदा बोलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उसके झूठ की बदबू से 1 मील दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं फरिश्ते उससे। खुद सोचें इतनी गंदगी है झूठ की, इतनी स्मेल है झूठ की, हमें आज तो स्मेल नहीं आ रही, एक एक झूठ, उस वो टाइम गुजर जाएगा जिसके लिए आपने किसी के सामने अपने आप को अच्छा पोज करने के लिए, या ये नाराज ना हो जाए, या ये ना हो जाए, उसके लिए जो आपने झूठ बोला है ना, वो वक्त गुजर जाना, ना उस बंदे को याद रहना, ना आपको याद रहना कि वो क्या वाकया हुआ था, लेकिन फरिश्ते लिख लेंगे। और एक एक झूठ का कैसे हिसाब दोगे आखिरत में, कितनी लंबी लिस्ट होगी झूठों की। तो एक ये सोच लें कि मैंने इस रमज़ान में झूठ छोड़ना, क्योंकि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कुछ भी हो सकता, बकील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, ठीक है, कंजूस हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। ये तो मोमिन के साथ सूट ही नहीं करता कि वो झूठ बोले। तो झूठ को इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी से निकाल दें और कोशिश शुरू कर दें इस पर इंशाल्लाह ताला। आज की एक चीज़ जो आपने करनी है दिन में, वो है जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी ज़रूर करिए, और जितनी आपको नेमतें मिलती जाएं तो और ज़्यादा शुक्र करें। आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह फतह नाजिल हुई थी, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में और भी ज़्यादा कोशिश शुरू कर दी, और भी ज़्यादा इबादत गुजार हो गए। पूछा किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह इस आयत में तो आपकी सारी अगली पिछले गुनाहों, गुनाह तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लग्जिशें सब भी माफ़ करने की, ख़ताएं माफ़ कर दी गई हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मसलन हमें कोई कह दे, भाई आप तो, आपकी तो माफ़ी हो गई, सब माफ़ है, आगे करें, पीछे करें, ज़िंदगी में, फ्यूचर में करें, पास में, सारा माफ़ हो गया, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा इबादत करने शुरू जाएंगे या काम? और रिलैक्स करने का टाइम आ गया, चलो अब तो सारी माफ़ी ही हो गई है। तो किसी ने पूछा इसी तरह कि भाई आपकी तो अगली पिछली खताएं माफ़ हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्र ना करूं? यानी क्या मतलब है कि जब नेमत मिलती है तो और शुक्र गुजार हो गए। कई अहादीस में हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से फतह की खबर आती या कोई खुशी की बात सुनते, तो अल्लाह के आगे शुक्र के लिए सजदे में गिर जाते थे, शुक्र ऐसे अदा किया करते थे कि यार, यानी नेमत मिलने पे, ये नहीं कि पार्टियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो पार्टी करो, आप दावत करो, आप लोगों को खिलाओ खाना, लेकिन शुक्र भी तो अदा करो। और शुक्र कैसे, आपने इसमें कैसे पता चल रहा है शुक्र अदा करने का, कि और ज़्यादा इबादत में तेज़ हो गए। मैंने वही आपको बताया ना, उस नौकर की तरह, या आपने जिसको ज़्यादा पे हायर किया, जिस ज़्यादा और जिस जिसको आप अपने उसकी पे बढ़ा दी है, तो आप काम भी तो ज़्यादा करो। तो ये भी एक शुक्रगुजारी का तरीका है कि इंसान और ज़्यादा अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए। नमाज के बारे में थोड़ी सी आज आपको बात बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज सही नहीं है जिसमें आदमी रुकू और सजूद ठीक से नहीं करता। तो हमारे रुकू और सजूद जो है ना, उनको सही करने की ज़रूरत है। अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे थे कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा तक, जब इंसान कहता है रब्बना वलकल हम्द, तो इसके बाद कोई चाहे तो कह दे हम्द कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, कि हम्द ऐसी हम्द जो बहुत ज़्यादा है, पाकीज़ा है, बाबरकत है, बरकत है फी इसमें, हमदन हम्द तारीफ़, कसीरन बहुत, तय्यिबन पाकीज़ा, मुबारकन बरकत की गई, फी ही इसमें। क्योंकि जिस बंदे ने ये कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख़्स की बड़ी तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा है जो इस बात का सवाब लिखने में एक दूसरे से जल्दी कर रहे थे कि हम इसका सवाब लिखें, भाग के इसका सवाब लिखना चाहते थे। इतना प्यारा ये कलमा है, तो अगर आप इसको मिला लें, जिनको नहीं याद तो वो याद कर लें, ठीक है। और रुकू भी सही तरीके से कीजिए, रुकू में आपकी बाजुओं में खम नहीं होना चाहिए, बाजू सीधे होने चाहिए, और कमर भी आपकी बिल्कुल सीधी हो जाए, फ्लैट हो जाए, छोटा सा करके ज़रा सा झुकना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सजदे में गए, सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, आला आला है, बुलंद है, और आप दूसरी भी एक और तस्बीह भी हमें पता चलती है जो कि बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में ये तस्बीह भी की थी। आपको पता है ना डिफरेंट डिफरेंट तस्बीहात हैं सजदे की भी रुकू की भी, हमने एक ही सीखी हुई है ना तो हम बस उसी को पढ़ते जाते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप वैरायटी इसमें कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा कि और आपका नमाज में दिल लगेगा ना, कभी एक पढ़ ली कभी दूसरी पढ़ ली। तो सुबहानक, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, रब्बना हमारे रब, व बिहम्दिक साथ तेरी तारीफ के, अल्लाहुम्मा ग़फिरली ए अल्लाह मुझे बख्श दे। ये इतनी प्यारी तस्बीह है ना, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं आती तो हम महरूम रहते हैं कि ये इतनी प्यारी तस्बीह है। इस तस्बीह में आपने मग़फ़रत भी मांग ली, सजदे में अल्लाह से सबसे करीब है और आपने मग़फ़रत भी मांगी। ठीक है, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा, आप कहते हैं ना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ते हैं ना शुरू में, तो इसका आसान तरीका याद करने का मैं बताती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा तो पढ़ लिया, आगे बीच में रब्बाना लगा दें, फिर आगे वही व बिहम्दी का। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कहने की बजाय सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दी का कह के उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फिर ली, तो कितनी आसान हो गई ना आपके लिए याद करनी इंशाअल्लाह ताला। वुज़ू के अंदर अब हम वहाँ तक पहुँचे थे कि चेहरे को आपने धो लिया, अब राइट साइड से आपने बाजू धोने हैं, कोहनियों समेत, पहले राइट फिर लेफ्ट। और इसमें कोशिश करें कि उंगलियों का खलाल भी कर लें ना, उंगलियों के अंदर हाथ फेर लिया करें ताकि उंगलियों के बीच में की जगह खुश्क ना रहे, क्योंकि हज़रत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे तो उंगलियों का खलाल फरमाते थे, एड़ियों को रगड़ते थे और फरमाते थे उंगलियों का खलाल करो, अल्लाह ताला इनके दरमियान जहन्नम की आग को दाखिल ना करेगा। ये दारे कुतनी की रिवायत है। तो एक तो ये, अच्छा चलें अब इंशाल्लाह टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे बात कर लेंगे कभी। अच्छा जी, कुरान का अगला अपने इंशाल्लाह ताला पारा पढ़ेंगे आज। क्या आपका एम होना चाहिए कि 1.5 पारा आपने मुकम्मल करना है, ठीक है, और खुश आवाज़ी से पढ़ें, जितना आप प्यारा पढ़ सकती ना उतना प्यारा पढ़ें। क्यों, कौन सुन रहा है, कौन सी हमारी टीचर सुन रही है, कौन सी हमारी ग्रुप इंचार्ज सुन रही है, कोई भी नहीं सुन रहा, अल्लाह सुन रहा है आपका कुरान। तो टीचर को आप कैसा सुनाएंगे और अल्लाह ताला को कैसा सुनाएंगे, जब रब सुन रहा हो कैसा पढ़ेंगे बताएं, वैसा ही पढ़िएगा। आज की दुआ है जो हर किस्म की परेशानी, सुस्ती, काहली, स्पेशली आज मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया, ये जो जो सुस्तियाँ हमें हो रही हैं, काहलियाँ हो रही हैं इबादत में, उतनी ज़्यादा हम मे भी फ्रेश नहीं रहे, तो उसके लिए ये दुआ बहुत ही अच्छी है। इसलिए कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा यानी जब दिन गुजरते जाते हैं थोड़ा सा पीछे रहते हैं, हो सकता है आप माशाल्लाह और भी आगे जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये दुआ अभी से पढ़ना शुरू कर दें ताकि इंशाल्लाह ताला आपके लिए फिर ये चीज़ आपको लाहक होगी नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, ए अल्लाह तू मुझे बचा के रखना, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में ले ले हम से और हुज़्न से। हम क्या है, यानी गम परेशानी, इससे या अल्लाह अपनी पनाह में ले ले, क्योंकि परेशानी और गम में इंसान ना कुछ खास कुछ कर नहीं सकता, फिर कोई उस ना इबादत में दिल लगता। देखिए अब टेंशनें जब हो जाती हैं तो कैसी इंसान की नमाजें भी होती हैं। तो अल्लाह हम और हुज़्न से बचा ले, वल अज्ज़ी वल कसल, अज्ज़ और कसल से, आजिज़ हो जाने से और काहली से, वीकनेस से और लेजीनेस से, ठीक है। अच्छा, वल जुबनी वल बुखल, और जुबन से यानी बुजदिली से, और बुखल से बखील होने से, माइजर होने से, वदाला इद्दैनी व गलबत रिजाल, और कर्ज के बोझ से और लोगों के तसल्लुत से, यानी लोग आपके ऊपर हावी हो जाएं। और एक जगह पे आता है व गलबत इद्दैनी व कहर रिजाल, वो भी सही है, दोनों ही हदीस में आती हैं, लेकिन व दला दैनी व गलबत रिजाल ये बुखारी में आती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला, और आज का जिक्र है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सहाबा कराम ने जब भी ये ज़िक्र किया तो अल्लाह ताला ने उनको दोनों जहान की नेमतों से नवाजा। तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील एक तजर्बा शुदा ऐसा ज़िक्र है जिससे इंसान के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ने से, ये तजर्बे से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, जिनके घर में सीढ़ियाँ हैं उनके लिए स्पेशल अजर की आज बात है। जिन जिनके घर में भी सीढ़ियाँ हैं, जब ऊपर जाएँ हर स्टेप पे अल्लाह अकबर, नीचे उतरें हर स्टेप पे सुबहान अल्लाह, तो आप दिन में कितनी दफ़ा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाएंगी उतनी दफ़ा अजर कमाती जाएंगी। तो सीढ़ियों वाले घरों के लिए ज़्यादा अजर की बात है आज इंशाल्लाह ताला। चलें जी, आज टाइम थोड़ा सा मैंने आपका ज़्यादा लिया है। अल्लाह ताला आप लोगों का बैठना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी ये बात करना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें इबादतों का शौक़ अता फरमा दे, इबादत में हमारा दिल लगे, और अल्लाह के ज़िक्र में, क़ुरान में, हमारी नमाज़ों में हमारा दिल लगने लगे, हमें शौक़ पैदा हो जाए उसके। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।